हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। युग भले ही इतने टाइम तक कोमा में रहा हो, पर आज भी उसकी स्ट्रेंथ कमाल की थी। उसने इन 4 महीनों में खुद को अच्छे से तैयार कर लिया था। मॉल में हुए हमले से युग और मलिक ने अपनी फैमिली को बचा लिया था। युग ने उनमें काफ़ी आदमियों को छोड़ दिया था और साथ ही उसे इसके पीछे के मास्टरमाइंड का पता चल गया था। युग ने काफ़ी स्मार्टली सब कुछ किया था। वो मॉल से बाहर निकला और गाड़ी में आकर बैठ गया। मलिक अभी भी वहीं पर था। वो मॉल को साफ करवा रहा था ताकि मॉल खुलने पर किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी का पता ना चले। युग ने अपने प्लान के तहत डीके के कुछ आदमियों को जिंदा छोड़ दिया था ताकि वो उस तक ये खबर पहुंचा सके कि युग जिंदा है। जैसे ही युग की गाड़ियां वहां से निकली, एक आदमी ने तुरंत डीके को कॉल किया और घबराई आवाज में कहा, वो जिंदा है, वो डेविल, वो बिल्कुल ठीक है। किसने कहा आपने कि वो कोमा में है? अरे उसकी वजह से तो आज हमारे कई आदमी कोमा में पहुंच गए हैं। क्या? डीके ने हैरानी से कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसने उसके घर से ही हमें ये खबर मिली थी कि वो कोमा में है। उसने हमें सबूत भी दिखाए थे। मैं नहीं जानता, बस वो युग राणा का हमशक्ल तो हो नहीं सकता ना। उसके जैसा खतरनाक एटीट्यूड और स्मार्टनेस लाना किसी हमशक्ल के बस का तो बिल्कुल नहीं होगा। मैंने अपनी इन्हीं 2 आंखों से उसे मॉल से बाहर निकलते हुए देखा था और जिस तरह से वो चल रहा था उससे साफ था कि अंदर बहुत बड़ा कांड हुआ होगा। उस आदमी ने जवाब में कहा, वो बाहर था तो उसे अंदर के बारे में पूरी तरह पता नहीं था, लेकिन बाहर उसने युग को देखा। उस बारे में उसने सब कुछ डीके को बता दिया था। डीके ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कॉल कट कर दिया। वो गुस्से में जोर से चिल्लाकर बोला, सम्राट मल्होत्रा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तुम अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। मेरी वजह से ही आज हर एक देश में तुम्हारी कंपनी खड़ी हो पाई है। तुम्हें रोड पर नहीं ला दिया तो मेरा नाम भी डीके नहीं। डीके उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने जल्दी से सम्राट को कॉल किया और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करना। तुम क्या चाहते हो कि मैं सीधे सीधे डेविल से दुश्मनी मोल लेकर मारा जाऊं? अरे वो जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। दुआ करो कि मेरे किसी आदमी ने उसके सामने मुंह नहीं खोला होगा। अगर किसी ने मेरा नाम ले लिया तो सही सलामत तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अगर माफिया वॉर हुई तो उसमें तुम भी लपेटे में आ जाओगे। डीके जिस लहजे में बात कर रहा था उससे साफ जाहिर था कि इस वक्त वो कितना बौखलाया हुआ है। वो सीधे सीधे सम्राट को बर्बाद करने की धमकी दे रहा था। सम्राट जानता था कि डीके की धमकियां खोखली नहीं होती थीं, इसलिए वो घबरा कर बोला, मेरा यकीन करो डीके, मैंने तुम्हें डबल क्रॉस करने की कोशिश नहीं की है। ये खबर मुझे खुद मान्या राणा ने दी है। जिसने भी तुम्हें ये झूठी खबर दी है उसे तो मैं वैसे भी नहीं छोड़ूंगा। बस दुआ करो कि युग राणा के सामने मेरा नाम ना आया हो। इतना कहकर डीके ने कॉल कट कर दिया। डीके माफिया में किसी भी अलायंस के अंदर नहीं आता था और वो ना ही किसी रूल को फॉलो करता था। अब तक वो युग से दूर ही रहता था क्योंकि वो जानता था कि वो किसी भी माफिया से टक्कर ले सकता है, लेकिन युग राणा से नहीं। युग से दूर रहते हुए डीके ने अपना एम्पायर काफी बड़ा कर लिया था और अब युग की नज़रों में आने पर डीके को अपनी बर्बादी दिखाई दे रही थी। वैसे भी डीके ने अपने आदमियों को ध्रुव को मारने के लिए भेजा था, ना कि युग को। मान्या की गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से वो मुसीबत में आ गया था और इस वक्त वो इन सबसे बाहर निकलने के तरीके ढूंढने लगा। दूसरी तरफ युग कृषा और ध्रुव के साथ घर पर आ गया था। उनके साथ में मीरा और वीर भी थे। मीरा और वीर आते ही अपने कमरे में चले गए तो वहीं युग ध्रुव और कृषा के साथ अपने रूम में आया। ध्रुव सोया हुआ था तो युग ने उसे उसके बेडरूम के बेड पर लेटाया और उसके बालों में हाथ सहलाने लगा। कृषा ने देखा युग के चेहरे पर कोई भी परेशानी का भाव नहीं था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो रिलैक्स था, लेकिन इन सबके बाद कृषा काफी डर गई थी। बात ध्रुव पर आई थी तो उसका डर जायज था। कृषा ने धीरे से युग से कहा, तुम इतना रिलैक्स कैसे रह लेते हो? तुम्हें पता है मुझे इन सबसे डर लगता है, और अब तो हमारा बेटा भी इन सब में इन्वॉल्व हो रहा है। देखा तुमने, वो उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन वो उसे एक खरोच भी नहीं पहुंचा पाए। युग ने कृषा की तरफ देखकर सर्द आवाज में कहा, युग राणा अपने दुश्मनों को खत्म करना अच्छे से जानता है। मेरी स्ट्रेंथ बनो, ना कि मेरी कमजोरी। बाकी मेरे होते हुए मेरे बच्चे और तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुमसे कहीं ज्यादा प्यार है मुझे ध्रुव से। ये क्या बात हुई, तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो ध्रुव से? कृषा नाराजगी जताते हुए बोली, प्यार कोई बांटा हुआ थोड़ी ना है, जो मैं ज्यादा करती हूँ और तुम कम करते हो। लेकिन मैंने ऐसा कहा मैं ज्यादा करता हूँ और तुम कम? युग ने भौंय उठाकर कहा। कृषा ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ एक ही बात है, ऐसे बात को घुमाकर टॉपिक चेंज मत करो। जरूर उन्हें मान्या ने ही बताया होगा तुम कोमा में हो। अब तक मान्या के पास ये न्यूज़ पहुंच चुकी होगी कि तुम ठीक हो चुके हो। मान्या पूरी फैमिली को बता देगी, फैमिली को नहीं भी बताएगी तो वहां से भाग जाएगी और फिर से उसे ढूंढना होगा। कृषा परेशानी में लगातार बोले जा रही थी और वो जो बोल रही थी वो सच भी था। युग ने कृषा की तरफ पानी का ग्लास बढ़ाकर कहा, पहले थोड़ा सांस ले लो। तुम मुझे कच्चा खिलाड़ी समझती हो क्या? मैं कोमा में गया था, कोई दूसरा जन्म लेकर वापस नहीं आया हूँ, जो मुझे पता नहीं कि किस सिचुएशन से कैसे निपटना है। कल का टाइम तुम दोनों को रिलैक्स होकर देने का सोचा है, इसका मतलब पहले से मैंने प्लानिंग कर रखी है। अब मुझे तुम्हारे मुंह से इन सब के बारे में कुछ नहीं सुनना है, कोई कहीं नहीं जाएगा। रही बात मान्या राणा की, तो वो मेरी शिकार है और योग राणा अपने शिकार को आसानी से जाने नहीं देता। कृष्ण ने उसकी बात पर हामी भरी। उसे रिलैक्स करने के लिए योग ने उसे अपने सीने से लगा लिया और सहला कर कहा, लगता है मेरे पीछे से काम संभालने के चक्कर में तुमने काफी स्ट्रेस झेला है, मेरी वजह से तुम खामखा इसमें इन्वॉल्व हो गई, पर देखा जाए तो अच्छा है, इसी बहाने तुम्हें सेफ्टी और लोग क्या प्लान कर सकते हैं उसके बारे में समझ तो आई। कृष्णा ने जवाब में कुछ नहीं कहा, वो जानती थी कि युग सब अच्छे से संभाल लेगा, फिर भी उसे ध्रुव के लिए डर लग रहा था। जब से सम्राट के पास डीके का कॉल आया था, वो परेशानी में इधर उधर चहलकदमी कर रहा था। रात के लगभग 10 बज रहे थे। सम्राट बार बार मान्या से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। रात को ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसके सिर में दर्द था, इसलिए उसने अपने घर पर स्पा ट्रीटमेंट लिया था। उसके बाद से ही मान्या सो रही थी। रात को डिनर के लिए जब मेड उसके रूम में आई तो उसने मान्या को जगाया। डिनर के बाद मान्या ने अपना मोबाइल चेक किया तो उस पर सम्राट के काफी सारे कॉल आए हुए थे। ओ शिट यार, मैं ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिस कर गई, मान्या ने सिर पकड़कर कहा। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने अपना फोन साइलेंट पर कर दिया था। मान्या दोबारा सम्राट को कॉल लगाती, उससे पहले उसका खुद ही कॉल आ गया। उसको इतना डेस्परेट देखकर मान्या के चेहरे पर ईविल स्माइल थी।
मान्या नहीं जानती थी कि उसकी ये मुस्कुराहट कुछ ही देर में परेशानी में बदलने वाली थी। जैसे ही उसने कॉल उठाया, सामने से सम्राट चिल्लाकर बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी वजह से मैं इतनी बड़ी मुसीबत में आ गया हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, यू बिच! गुस्से में उसने मान्या को गाली दी। माइंड योर लैंग्वेज, होगे तुम सम्राट मल्होत्रा, लेकिन मैं भी मान्या राणा हूँ, जबान संभाल के बात करो। उसके इस तरह बात करने पर मान्या को गुस्सा आया और वो भी उसी की तरह चिल्लाकर बोली। सम्राट ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और मान्या से कहा, अच्छा ठीक है, तमीज से बात करके बताता हूँ। तुम्हारी वजह से हम सब मुसीबत में आ गए हैं। तुमने कहा था युग कोमा में है, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक है। आज हमने उस पर अटैक करवाया था और उसने ना सिर्फ अटैक को अच्छे से रोका, बल्कि इस तरह से चल रहा था जैसे वो हमें चिढ़ा रहा हो। युग के ठीक होने की बात सुनकर मान्या भी सकते में आ गई। एक पल के लिए उसे यकीन नहीं हुआ तो सम्राट ने कहा, हमें भी तुम्हारी तरह यकीन नहीं हुआ था जब तक उस इंसान ने हमें एक क्लिप नहीं भेजी थी। यकीन मानो, वो बिल्कुल ठीक है और कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। अगर तुमने पहले उसके खिलाफ कुछ भी किया है तो उसके यहाँ आने से पहले अंडरग्राउंड हो जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। मैं बाद में बात करती हूँ, मेरे कॉल का वेट करना, मान्या ने कॉल कट कर दिया। मान्या के चेहरे पर गहरी परेशानी के भाव थे। उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। युग ने अपनी फैमिली तक से ये बात छुपाई तो इसका मतलब साफ है, उसे मेरे बारे में सब पता है। युग के यहाँ आने से पहले मुझे राणा मेंशन छोड़कर निकलना होगा। जैसा कि कृषा को डाउट था, मान्या को पता चलते ही वो वहाँ से भागने का सोचेगी, और वही हुआ। जैसे ही मान्या को सब पता चला, वो जल्दी से अपनी पैकिंग करने लगी और वहाँ से अंडरग्राउंड होने जा रही थी।